ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा बैठक में विनियोजन विधेयक 2082 पर उठे सवालों के संबंधित मंत्रियों द्वारा जवाब देने का क्रम रहा जारी। मॉनसून की अवधि भर बाढ़, भूस्खलन व डुबान के जोखिम वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी वाहन चलाने पर रोक की व्यवस्था करने का राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण ने गृह मंत्रालय से किया आग्रह। और इसराइल ने ईरान के कई एयरबेस पर किए हमले। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक 2082 अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के विनियोजन शीर्षकों पर बहस के दौरान उठे सवालों का संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। बता दें कि प्रतिपक्षी दलों राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के विरोध के बीच संसद की कार्रवाई चली थी। इस दौरान रासोपा के सांसद ने विजिट वीजा मामले की छानबीन के लिए उच्चस्तरीय संसदीय छानबीन समिति या न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की। इसके बाद मांग पूरी न करने पर बैठक बहिष्कार करने के जिक्र के साथ रासोपा और राप्रपा के सांसद बैठक बहिष्कार कर बाहर निकल गए। बैठक में अपने अपने मंत्रालय के आवंटन शीर्षकों पर सवालों के जवाब में संबंधित मंत्रियों ने उन्नत काम करते हुए संबंधित क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में चलचित्र विधेयक 2081 पर विचार करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल द्वारा बैठक में प्रस्तुत किए गए चलचित्र विधेयक 2081 पर विपक्ष के प्रस्ताव को सदन ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। चलचित्र विधेयक 2081 के संदर्भ में बोलते हुए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि पुराने कानूनों और नीतियों को बदलते हुए समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन कर आगे बढ़ना जरूरी था, इसलिए यह विधेयक लाया गया है। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने राष्ट्रीय सूचना आयोग का आर्थिक वर्ष 2080-81 का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक के विशेष समय में सांसदों ने समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आषाढ़ 12 गते गुरुवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने सार्वजनिक और निजी वाहनों के संचालन पर आवश्यकतानुसार रोक लगाने का आग्रह किया है। मॉनसून प्रतिकार्य कमांड पोस्ट की आज हुई दूसरी बैठक में सार्वजनिक और निजी वाहनों के संचालन पर आवश्यकतानुसार प्रतिबंध लगाने के लिए सभी 77 जिला सुरक्षा समितियों को निर्देश देने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध करने का निर्णय किया गया। प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्ट ने बताया कि मॉनसून के दौरान भारी वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ भूस्खलन को ध्यान में रखते हुए संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों, नदियों, नालों और जल प्रवाह के उच्च स्तर पर पहुंचने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों तथा स्थानीय सड़कों से मौसम पूर्वानुमान और परिस्थितियों को देखते हुए वाहनों पर रोक लगाने की पहल की जा रही है। सड़क राजमार्गों पर बाढ़, भूस्खलन आदि के कारण कभी भी कहीं भी अवरोध उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सड़क राजमार्गों को तुरंत संचालित करने के लिए आवश्यक उपकरण 24 घंटे तैयार अवस्था में रखने की व्यवस्था करने के लिए सड़क विभाग और सभी 753 स्थानीय तहों से अनुरोध करने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी कार्यकारी प्रमुख भट्ट ने दी। उनके अनुसार तत्काल बचाव और राहत में उपयोग होने वाली न्यूनतम सामग्रियों को भी तैयार रखने व विशेष परिस्थितियों में सड़क अवरुद्ध होने और वाहनों के चलने में असमर्थ होने की स्थिति में कम से कम 15 दिनों के लिए खाद्यान्न की कमी न हो, इसकी व्यवस्था करने के लिए सभी 753 स्थानीय तहों से अनुरोध करने का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि यदि युवा भ्रमित होते हैं तो परिवर्तन और प्रगति की गति धीमी हो जाती है। आज राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल की केंद्रीय समिति की दूसरी पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि युवाओं को व्यक्ति की बजाय सही विचार और नेतृत्व का समर्थन करना चाहिए। अध्यक्ष ओली ने कहा कि युवाओं को सही तरीके से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के प्रति असहिष्णु नहीं होना चाहिए और ये बताया कि दुनिया में नवाचारी तरीकों से काम करने वाले प्रयास युवाओं द्वारा ही किए गए हैं। उन्होंने युवाओं से अपने क्षेत्र में दक्षता हासिल करने और नई उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का आह्वान भी किया। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई का परिणाम आषाढ़ के तीसरे सप्ताह तक सार्वजनिक करने की तैयारी की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अंतर्गत परीक्षा नियंत्रण कार्यालय भक्तपुर सानोट ठिमी के परीक्षा नियंत्रक डॉ गणेश प्रसाद भट्टराय ने बताया कि कक्षा 10 एसईई का परिणाम आषाढ़ माह के तीसरे सप्ताह तक घोषित किया जाएगा। चैत्र माह में शिक्षकों द्वारा किए गए सड़क आंदोलन के कारण परिणाम प्रकाशन प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, जिसके चलते इसे आषाढ़ 6 तक जारी करने की योजना में देरी हुई। अब बोर्ड ने आषाढ़ के तीसरे सप्ताह तक परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा है। साल 2081 के चैत 7 से चैत 19 तक आयोजित एसईई परीक्षा में लगभग 5,10,000 छात्रों ने भाग लिया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गृहमंत्री रमेश लेखक ने अध्यागमन सुधार के लिए तत्काल किए जाने वाली कार्यवाही को आगे बढ़ाने का निर्देश किया है। आज गृह मंत्रालय में हुई आंतरिक बैठक में गृहमंत्री लेखक ने अध्यागमन में कर्मचारियों को तैनात करते समय स्पष्ट मापदंड और कार्यप्रणाली के अनुसार काम करने का निर्देश किया। ये जानकारी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता रामचंद्र तिवारी ने दी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने प्रदेश अस्पताल सुरखेत के लेखा अधिकृत समेत 3 लोगों के खिलाफ आज विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। आयोग ने सुरखेत प्रदेश अस्पताल के लेखा अधिकृत शंकर प्रसाद सुवेदी और करार कर्मचारी तृप्ति शाही ठकुरी के खिलाफ 25,67,526 रूपये की वित्तीय हानि वसूल करने की मांग की है। आरोप है कि उन्होंने अस्पताल के बिलिंग काउंटर से प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करके अनधिकृत रूप से गबन किया। इसी मामले में अस्पताल परिसर में स्थित कुमारी बैंक के एक्सटेंशन काउंटर की तत्कालीन इंचार्ज गोमा सिंजाली मगर के खिलाफ भी समान रकम की वसूली का दावा किया गया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार पोडेल ने दी। चितवन राष्ट्रीय निकुंज में इसी आषाढ़ 15 गते से जीप सफारी बंद होने जा रही है। बारिश के साथ ही निकुंज के भीतर जीप से यात्रा करना कठिन हो जाता है, इसलिए सफारी सेवा को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। ये जानकारी निकुंज ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिका की ओर से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद अब इसराइली सेना ने भी ईरान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया है। इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर ताजा हमलों की जानकारी दी है। इसराइली सेना ने कहा है कि उसकी वायुसेना ने तेहरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एक साथ कई हमले किए हैं। ये बयान उस समय आया है जब ईरानी मीडिया ने बताया है कि ईरान की राजधानी में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और शहर के ऊपर धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ एक वीडियो में दिखा। इससे पहले इसराइली सेना ने बताया था कि उसने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया है। सेना के मुताबिक इन हमलों में 15 एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए गए और रनवे को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान और इसराइल के बीच जारी जंग के बीच पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं और मशहूर हस्तियों ने सरकार से मांग की है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन के फैसले पर दोबारा विचार करें। ये मांग तब सामने आई जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। पाक सरकार ने शुक्रवार को अचानक ऐलान किया था कि वो हाल के भारत पाकिस्तान तनाव में ट्रंप के कथित शांति प्रयासों के लिए उन्हें इस सम्मान के लिए नामित करेगी। इसके बाद पाकिस्तान में अब सरकार पर चापलूसी करने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के हस्ताक्षर वाला एक सिफारिशी पत्र नॉर्वे की नोबेल शांति पुरस्कार समिति को भेजा जा चुका है, लेकिन अमेरिका की ओर से ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों पर इसराइल के साथ मिलकर बमबारी के बाद यह फैसला आलोचना के घेरे में आ गया। डॉन अखबार के मुताबिक कई प्रमुख नेताओं ने इस फैसले की समीक्षा की मांग की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.9 3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा बैठक में विनियोजन विधेयक 2082 पर उठे सवालों के संबंधित मंत्रियों द्वारा जवाब देने का क्रम रहा जारी। मानसून की अवधि भर बाढ़, भूस्खलन व डुबान के जोखिम वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी वाहन चलाने पर रोक की व्यवस्था करने का राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण ने गृह मंत्रालय से किया आग्रह। और इसराइल ने ईरान के कई एयरबेस पर किए हमले। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।